लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। के ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम सब लोग सृष्टि की रक्षा के प्रति समर्पित युवाओं में आनंदित होते हुए सरल और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय जीवन शैली हेतु सही विकल्पों को चुनने का साहस प्राप्त करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, मूल्यांकन करना मानवीय जीवन का एक अहम अंग है। हम अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न रूपों में और यदि देखा जाए तो हर समय अपना मूल्यांकन करते हैं। यह एक तरह से व्यक्तिगत रूप में किसी भी बात, कार्य और घटना को लेकर अपनी आत्म परख करना है। खासकर जीवन की बातें और रोजमर्रे के कार्य तथा घटना कर्म हमें कितना प्रभावित करते हैं। क्या हम अपने जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं से अपने को सकारात्मक रूप में प्रभावित होता पाते हैं, जो हमें अपने जीवन को उत्साह और जोश में जीने हेतु मदद करता है, या हम जीवन की उन घटनाओं से नकारात्मक रूप में प्रभावित होते जो हमें जीवन से हताश और निराश कर देता है। जीवन में व्यक्तिगत मूल्यांकन हमारे लिए विभिन्न तरह के सवालों से शुरू होती है, जिसके फलस्वरूप हम स्वयं से यह पूछते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और घटना जिसका संबंध हमारे जीवन से होता है, उनके बारे में हम कितना जानते हैं। वे सारी चीजें हमें किस हद तक प्रभावित करती हैं। यदि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो उसका कारण क्या रहा होगा। यदि हमें अच्छी सफलता मिली, उसके लिए हमने क्या क्या तैयारियां की। श्रोताओं, 24वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार हमारे लिए यीशु के द्वारा शिष्यों को लिए गए एक मूल्यांकन का हाल प्रस्तुत करता है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपना व्यक्तिगत मूल्यांकन करें कि हम यीशु ख्रिस्त के द्वारा शिष्यों को पूछे गए सवाल का जवाब किस रूप में सटीक पाते हैं। हम व्यक्तिगत रूप में यीशु के बारे में क्या कहते हैं कि वे हमारे लिए कौन हैं?
ईसा अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिपी के गांवों की ओर गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूँ, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, योहन बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पेत्रुस ईसा को अलग ले जाकर फटकारने लगा, किंतु ईसा ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेत्रुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें व्यक्तिगत रूप में यीशु को जानने और समझने हेतु अग्रसर करे कि वे हमारे लिए कौन हैं, हम उन्हें अपने जीवन में किस रूप में देखते हैं, क्या उनका सही ज्ञान हमें उनकी मांग के अनुरूप जीवन यापन करने में मदद करता है, क्या हम अपने दैनिक जीवन में आत्म त्याग करते और अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे चलने को तैयार पाते हैं, क्या हम सुसमाचार के लिए अपने जीवन को खोने हेतु तैयार हैं। श्रोताओ, नबी इसायस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ ईश सेवक का अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास और भरोसे की बात व्यक्त करता है। यह हमें स्वयं यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और उन पर किए गए अत्याचारों का हवाला प्रस्तुत करता है। पुत्र अपने घोर अत्याचारियों के सामने अपने मुख को पत्थर की तरह कड़ा कर लेते और चुपचाप अपने दुखों को सहते हैं। वे अपने दुख भरी परिस्थिति में विचलित नहीं होते क्योंकि उनका विश्वास ईश्वर अपने पिता पर अडिग है। यहाँ हम विश्वास को जीवन के कठिन परिस्थितियों में सहनशील बने रहने में व्यक्त होता पाते हैं। विश्वास के कारण हम अपने में धैर्यवान और सहनशील बने रहते हैं जो हमें हताश और निराश हुए बिना जीवन में सदैव आगे बढ़ने को मदद करता है। श्रोताओ, वहीं संत याकूब के ग्रंथ से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए अपने विश्वास को कार्यों में अभिव्यक्त करने का आह्वान करता है क्योंकि कार्य के बिना हमारा विश्वास अपने में मरणशील है। हम जिन बातों पर विश्वास करते हैं वह शब्दों तक ही सीमित ना रहे बल्कि एक ठोस कार्य में व्यक्त हो क्योंकि हमारा विश्वास अपने में अमूर्त है जबकि यह एक कार्य में अपने को मूर्त रूप में व्यक्त करता है। सुसमाचार में हमने पेत्रुस के ठोस विश्वास को उनके वचनों में व्यक्त होते सुना जो यीशु के संबंध में उनके व्यक्तिगत गहरे ज्ञान को प्रकट करता है। वह यीशु के द्वारा शिष्यों को लिए गए मूल्यांकन में खरा उतरता है क्योंकि उसने स्वामी के निकट रहते हुए विश्वास भरे उनके प्रेम पूर्ण कार्यों का अनुभव गहरे रूप में किया है। लेकिन अपने इस अनुभव के बावजूद हम पेत्रुस को दुनियादारी की भावना से ग्रसित पाते हैं जिसके कारण वह अपने स्वामी को उनके प्रेरित कार्यों से भ्रमित करने की कोशिश करता और ऐसे दुनियादारी की मानसिकता के कारण उसे यीशु से कड़ी फटकार सुननी पड़ती है। श्रोताओं, सुसमाचार हमारे लिए यीशु के मार्ग में चलने की चुनौती को स्पष्ट रूप में व्यक्त करता है अर्थात यीशु के शिष्यों और उनके अनुयायियों के रूप में अपने स्वामी यीशु ख्रिस्त की राह में चलने हेतु दुख कष्ट तकलीफों कठिनाइयों का सामना करना निश्चित रूप में होगा। हम क्रूस के मार्ग से भाग नहीं सकते हैं और ना ही अपने जीवन के क्रूस को अस्वीकार कर सकते हैं और यदि हम ऐसा करते तो हम उनके शिष्य नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि यीशु हमें अपने पीछे आने हेतु आत्म त्याग करने और दैनिक जीवन में अपना क्रूस ढोने को कहते हैं। श्रोताओ, विश्वास का संबंध दिव्य ईश्वर से है और यह विश्वास हमें अपने लिए नहीं अपितु दूसरों के लिए जीवन जीने का निमंत्रण देता है जैसे कि स्वयं यीशु ख्रिस्त ने अपने जीवन में किया। विश्वास को अपने जीवन के कार्यों में अभिव्यक्त करने का अर्थ है अपनी व्यक्तिगत सोच अपनी खुशी और अच्छी लगने वाली चीजों के अनुरूप जीवन जीना नहीं बल्कि यह अपनी सोच और अच्छाइयों का परित्याग कर अपने जीवन को उस ईश्वरीय योजना के अनुरूप संलग्न करना है जो हमें अपने कार्यों को पूरा करने हेतु बुलाते हैं। वहीं आत्म त्याग करना अर्थात अपने सोच विचारों के अनुरूप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना है जो वास्तव में हमारे लिए भारी क्रूस लगता है। आइए हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि वे हमें आत्म त्याग करने और क्रूस उठाकर अपने पीछे आने के मर्म को समझने में मदद करें, जो हमें सही अर्थ में सुसमाचार के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के योग्य बनाएगा, जिसके फलस्वरूप हम अपने जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। अमेरिका में 11 सितंबर के हमले एवं विध्वंस के सामने तीन संत पापाओं ने शांति और भाईचारा के लिए प्रार्थना का आह्वान किया है। अमेरिका में 11 सितंबर को जब आतंकी हमले हो रहे थे, तब वैटिकन में आम दर्शन समारोह हो रहा था। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय, जो आम दर्शन समारोह का संचालन कर रहे थे, अपनी साप्ताहिक धर्म शिक्षा न देकर अमेरिका में विनाश और मौत के शिकार लोगों के प्रति अपना गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, भले ही अंधेरी की ताकतें हावी होती दिखें, जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं वे जानते हैं कि बुराई और मौत के पास अंतिम शब्द नहीं है। 20 अप्रैल 2008 को संत पापा बेनेडिक्ट सोलवे ने पहली बार न्यूयॉर्क स्थित ग्राउंड जीरो का दौरा किया था। वहां उन्होंने अंग्रेजी में मौत के शिकार लोगों के लिए अनंत प्रकाश एवं शांति तथा उनके परिवार वालों की चंगाई के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने प्रार्थना की थी कि प्रभु हमें एक ऐसे विश्व के लिए काम करने हेतु प्रज्ञा और साहस प्रदान करे, जहां राष्ट्रों एवं सभी लोगों के दिलों में सच्ची शांति और प्रेम का राज हो। संत पापा फ्रांसिस ने भी अमेरिका की प्रेरित यात्रा के दौरान ग्राउंड जीरो का दौरा किया था। संत पापा फ्रांसिस ने स्मारक पर श्वेत गुलाब चढ़ाया था। उन्होंने मर्मभेद स्थल पर अंतर धार्मिक सभा का नेतृत्व किया था तथा सभी धर्मों के प्रतिनिधियों से अपील की थी कि वे एक साथ शांति को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा था, हमारी सभी विविधताओं एवं असहमतियों के बावजूद हम शांति के विश्व का अनुभव कर सकते हैं। बुडापेस्ट और स्लोवाकिया पोप फ्रांसिस के इंतजार में हैं। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने रेखांकित किया कि शस्त्र दिन में संत पापा फ्रांसिस उन सभी लोगों को माता मरियम को सिपोर्ट करेंगे जो कमजोर परिस्थितियों में हैं। संत पापा फ्रांसिस अपने 34वीं प्रेरित यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वे बुडापेस्ट में यूखरिस्त सम्मेलन का समापन मिस्सा संपन्न करेंगे। उसके बाद वे स्लोवाकिया जाएंगे। कार्डिनल परोलिन ने कहा कि यह एक दोहरी प्रेरित यात्रा है, जिसकी घोषणा खुद संत पापा फ्रांसिस ने इराक की प्रेरित यात्रा से वापसी के दौरान की थी। वैटिकन न्यूज से बातें करते हुए कार्डिनल ने रेखांकित किया कि स्लोवाकिया के शस्तिन स्थित राष्ट्रीय तीर्थस्थल पर तीर्थयात्रा संत पापा की सर्जरी के बाद की तीर्थयात्रा होगी।
इसलिए कुछ अर्थ में यह ऑपरेशन की सफलता के लिए माता मरियम को धन्यवाद देने के लिए भी है। अपनी इस यात्रा के बारे संत पापा फ्रांसिस ने इराक की प्रेरितिक यात्रा से लौटते समय कहा था कि यह प्रार्थना की उपज है, जिससे पहले ही कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था। बुडापेस्ट के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल एर्दो ने कहा कि हंगरी के सभी लोगों को एक दूसरे के साथ भ्रातृत्व में बढ़ने और उसका एहसास करने के लिए विश्वास के प्रकाश की जरूरत है। संत पापा फ्रांसिस अपनी प्रेरितिक यात्रा 12 सितंबर को शुरू करेंगे। हर बार की तरह उन्होंने इस बार भी अपनी इस प्रेरितिक यात्रा को शुरू करने से पहले शुक्रवार को रोम स्थित मरिया मेजर गिरजाघर जाकर रोम की संरक्षिका माता मरियम से प्रार्थना की।
संत पापा फ्रांसिस ने सृष्टि के मौसम की याद करते हुए 11 सितंबर को ट्वीट संदेश में कहा, एक सच्चा पारिस्थितिक दृष्टिकोण हमेशा एक सामाजिक दृष्टिकोण बन जाता है, जिसे पर्यावरण पर बहस में न्याय को एकीकृत करना चाहिए, ताकि पृथ्वी की पुकार और गरीबों की पुकार दोनों सुनी जा सके। सृष्टि का मौसम 1 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जारी रहेगा। परिवार जब मिलकर प्रार्थना करता है तो वह एक साथ रहता भी है। परिवार तभी मजबूत होता है जब वह ईश्वर के वचन की खोज करता और उस पर चलता है। वह परिवार उदार है अगर वह जीवन के लिए खुला है। वह भेदभाव नहीं करता और जरूरतमंदों की मदद करता है। संत पापा फ्रांसिस का लक्ष्य उन दंपतियों, माता पिता, दादा दादी, बच्चों और नाती पोतों से है जो परिवार के लिए 14वें राष्ट्रीय परिवार तीर्थ यात्रा में भाग ले रहे हैं, जो आज 11 सितंबर से शुरू हो रहा है। इटली के 20 तीर्थालयों में हजारों परिवार आमने सामने और ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। संत पापा अपनी ओर से एकता और खुशी का साक्ष्य देने हेतु परिवारों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। संत पापा ने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए परिवार के सुसमाचार से बहने वाले उस विश्व पत्र अमोरिस लेतिसिया का एक जीवित संकेत बनने के लिए उनकी प्रशंसा की। संत पापा इस बात की पुष्टि करते हैं कि तीर्थ यात्रा में शामिल परिवार कितनी कठिनाइयों, कष्टों और नई गरीबी से कुचले हुए समय में यीशु मसीह में विश्वास का चमकता चेहरा दिखाते हैं। संत पापा ने प्रार्थना के लिए पहले से चुनी हुई थीम एकता में आनंद को रेखांकित करते हुए कहा कि एक लक्षित विकल्प जो उपभोक्तावादी और व्यक्तिवादी आनंद की तलाश न करने के लिए निमंत्रण को दोहराता है, वह आनंद जो सहभागिता में रहता है, जिसे साझा किया जाता है और यह लेने की बजाय देने की खुशी का अनुभव कराता है। संत पापा ने कहा कि वास्तव में भाईचारे का प्रेम आनंद की हमारी क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि यह हमें दूसरों की भलाई में आनंदित करने में सक्षम बनाता है। परिवार जीवित है अगर यह प्रार्थना में एकजुट है। परिवार मजबूत होता है यदि वह ईश्वर के वचन और उसके सभी नियमों एवं संभावित मूल्यों को फिर से खोज लेता है। परिवार उदार है और इतिहास का निर्माण करता है यदि वह जीवन के लिए खुला रहता है। अगर यह भेदभाव नहीं करता है और सबसे नाजुक और जरूरतमंदों की सेवा करता है, अगर यह दुनिया को दान की रोटी और भाईचारे का दाखरस देना बंद नहीं करता। संत पापा फ्रांसिस ने परिवारों की 10वीं विश्व बैठक की तैयारी के लिए तैयार आधिकारिक प्रार्थना दी। यह आध्यात्मिक तैयारी के लिए है जो 22 से 26 जून 2022 तक रोम में और साथ ही दुनिया भर के धर्म प्रांतों में होगी। संत पापा फ्रांसिस ने इस प्रार्थना का पाठ आज से ही शुरू करने हेतु आमंत्रित किया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।